ओम शांति। गीता दीदी का हम फूलों से स्वागत करते हैं। आप सभी तालियों से स्वागत कीजिए। कल आपने गीता दीदी को सुना है, परिचय भी लिया है, फिर भी कोई कोई आज नए आए हैं तो जो गीता दीदी राजयोग शिक्षिका 40 साल से ऐश्वर्य विश्वविद्यालय में समर्पित हैं, बचपन से ही आप इसके संपर्क में आए हैं और यहाँ के राजयोग शिविर की शुरुआत भी आपसे ही हुई है और अभी मुख्यालय में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग्स की कोऑर्डिनेटर हैं। आप देश और विदेश में अनेक सेवाएं करते हुए हर समय जो यहाँ पर आते हुए मेहमानों को बहुत बहुत भरपूर करते हैं और सभी आपसे बहुत लाभान्वित होके जैसे दुआओं के खजाने लुटा के जाते हैं, ऐसे गीता दीदी सबसे दुआएं लेते हुए ईश्वर के प्रिय पात्र बन के आपके समक्ष आज जो सत्र शुरू होने जा रहा है इसकी परिचय आपको सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अपना एक पार्टनर चुन लीजिए, आमने सामने हो जाइए अपने पार्टनर के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे से प्यार से देखिए एक दो को। ओम शांति कहिए। हैंडशेक करिए। नमस्ते। सलाम अलैकुम। सत श्री अकाल। एक दो को शाबाशी दीजिए। और आज का पॉजिटिव थॉट कौन सा रहा वो एक दो को बताइए। सुबह आप 5 बजे 6 बजे जब भी उठे हैं तब से लेकर 3-4 घंटे हो गए हैं, काफी कुछ विचार तो चले ही हैं, तो इतने घंटों में आपका आज का पॉजिटिव थॉट कौन सा रहा एक दो को बताइए, शेयर करिए। बताया एक दो को। बैठिए। अब कौन आएंगे यहां सामने, कौन सी जोड़ी आएंगे जो अपना पॉजिटिव थॉट शेयर करेंगे सबके साथ। हाथ ऊपर करें जो पैर यहां सामने आएंगे आगे स्टेज के आगे। कौन आएंगे आप में से, तीनों से आइए, एक माइक दीजिए। वहां ये पैर आ रहा है, आप आ जाइए, दोनों भाई आइए आइए, आप भी सामने आ जाइए। हाँ, अपना नाम बताइए, स्थान बताइए और आज कौन सा पॉजिटिव थॉट रहा।
मेरा नाम गीता मुछाला है, मैं मुंबई से आई हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं था, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आज मॉर्निंग में 3:30 बजे करीबन 3:30 बजे जागो का जो मधुर संगीत आया तब मुझे समय का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि माय थॉट वाज टू गेट अप बाय 5:45 एंड आई थॉट इट वाज 5:45। आई वाज सो मच टच्ड बाय दैट आई थॉट सच लाइक यू नो वेयर वाज आई फॉर सो मेनी इयर्स। सच में हमें जागरूक होना है, जीवन को कुछ अच्छी दिशा देना है और मैं उठ के अपना नित्य क्रम पता के Like, you know, I was ready to go for my meditation. Then I realized it's not 6:45, it was 4:15. So I was really, really touched. And I realized that I'm 53, but I have not achieved anything in my life. I have to start from scratch. And then the first lecture here in the morning was again eye to me. Every word was touching me. I wanted to grab everything in my life. It's too touching, and in a such a short time, if one can give such a great message, then in such a long life, we have to do a lot. That is the message I got through your first beginning of session.
Behen ko dijiye, short mein batayenge.
मेरा नाम रन्ना दे शाह है. मैं अपनी छोटी बहन के साथ पहली बार यहाँ आई हूँ. मेरा जो पर्सनल एक थॉट है वो ये है कि दो बार, एक 3:30 और सुबह 6:30 बजा, तो अपने आप ही पहला शब्द सुन मेरी आंखें खुल गई थी. प्रथम सत्र में मैं स्वतः प्रेममय ज्ञानमय आत्मा हूँ, और सत्र की अंतिम 5 मिनट मेरे लिए आह्लादक रही और यादगार रही.
मेरा नाम रवि भाई वोरा है. मैं डायमंड मर्चेंट हूँ. 25-3 महीने नक्की किया कि यहाँ पे आना है. मैं भी ब्रह्मा कुमारी में फर्स्ट टाइम आया हूँ. तो जिस दिन मैंने नक्की किया तो हम बस लेके आए हैं. वो सब जिम्मेदारी मेरे पे थी. थर्सडे तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ था, पर बिकॉज ऑफ दादा और शिव बाबा एक ही दिन में 47 मेंबर हो गए. तो वही दिन से, वही बॉम्बे के पल से दादा का आशीर्वाद हमारे साथ रहा. तो मेरे बस में जितने लोग थे उसकी ब्लेसिंग मुझे मिली. और दूसरी बात, तब से मेरे में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगी. तो ये मेरे रूम पार्टनर है, ये सीनियर है मुझसे, तो इनसे भी मुझे काफी चीज समझने को मिली. और इसके लिए मैं इसका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा. आज सुबह मैंने जो फर्स्ट सेशन अटेंड किया तो उसमें भी काफी चीज मुझे सीखने को मिली. पर ये मेरे अभी तो सबसे बड़े गुरु मेरे रूम मेट है, तो अभी मैं टोटल नया हूं इधर. और इधर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और बार बार आने का मन रहेगा.
मेरा नाम मुकुंदन है. I have been with the Brahma Kumari for the last 2.5 years. I'm not new. तो Brahma Kumari में 4 सेवा करना है, but is योग, ध्यान, धारणा और सेवा. मैं तीनों में आगे आता था. सेवा भी बिल्कुल, I am a bit introvert, not extrovert. So I was not going and spreading the message. आज का मुरली सुन के मैं ऐसा positive thought लिया है. मैं अभी खूब बजा के वो उसको स्प्रेड करने को कोशिश करूंगा. ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, यू कैन से.
ओम शांति. मेरा नाम प्रफुल्ला वोरा है. बहुत दिनों से सोचा था आप जाएंगे. अमिता दीदी का फोन आया, हमने यस कर दिया. यहाँ का अनुभव कभी नहीं भूलेंगे. आज का थॉट है, हमारा आत्मा एक बालक है, जैसे हम अपने बच्चे को बार बार चेक करते हैं, वो ठीक है. हमको हमारे आत्मा को भी बार बार चेक करना है, वो ठीक है. थैंक यू.
यहाँ का वातावरण, वाइब्रेशंस, ये संग भी हमारे विचारों को पॉजिटिव बनाता है. एक मंदिर और एक थिएटर है, तो दोनों ही ईंट, सीमेंट, रेत से बने हुए. पर एक मंदिर में जाने से कौन से विचार आते हैं और एक थिएटर में जाने से कौन से विचार आते, क्या अंतर है? दोनों मकान है, दोनों ईंट रेत सीमेंट से बने हैं, पर उस स्थान पर बैठकर कौन से विचार हम करते हैं, किस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति में हम रहते हैं, उसके आधार पर वायुमंडल क्रिएट होता है। तो यहां दिन रात वही आत्मिक उन्नति की बातें होती हैं, प्रवृत्ति होती है, और उसी लक्ष्य से रहने वाले यहां सेवा करते हैं तो वायुमंडल भी पॉजिटिव हो जाता है। तो स्वाभाविक आने वाले को इस प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। बहुत सुंदर विषय पर ये रिट्रीट है, आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति, मानव मन की ये पुरातन प्यास और खोज रही है। हरेक इंसान अपने जीवन में शांति और सुख चाहता है और सदियों से उसी की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास करता रहा है। कभी हम शांति के लिए जंगलों में जाते हैं, गिरिकंदराओं में जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, बगीचों में जाते हैं। जब तक प्रकृति के सानिध्य में होते हैं हमें शांति का अनुभव होता है, हम रिफ्रेश होते हैं। पर जैसे ही जीवन की वास्तविकता में आते हैं वापस वही दुख शांति के अनुभव होने लगते हैं। सिद्ध है कि ये प्राकृतिक शांति थी, प्रकृति की गोद में जब तक थे शांति सुख आनंद का अनुभव हुआ, तो ये प्राकृतिक शांति है। लेकिन आत्मिक शांति जिसको कहते हैं वो कोई बाह्य चीज पर आधारित नहीं है। आप देखते हैं शांति के लिए लोग यज्ञ करते हैं, कितने जौ घी तिल होमते हैं, कितना खर्च करते हैं कि वायुमंडल शुद्ध होता है, ग्रह शांत होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस प्रकार का यज्ञ कितने लोग कर सकेंगे, शांति का सही उपाय कौन सा है। जब कोई अशांति नहीं, दंगे फसाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, तो अखबार में छापते हैं कि आज एवरेज शांति रही। शांति की एब्सेंस शांति नहीं है, शांति अपने आप में एक स्थिति है, अनुभूति है। अंधकार कोई चीज नहीं है, भाई इस कमरे से अंधकार मिटाना है तो बोरियां भर भर कर अंधकार बाहर फेंको, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंधकार कोई चीज नहीं है। प्रकाश की एब्सेंस अंधकार है, इसलिए एक छोटी सी लाइट ऑन करते हैं अंधकार समाप्त हो जाता है। तो शांति की एब्सेंस अंधकार है, अशांति है। शांति एक शक्ति है, हमारी आत्मा स्थिति है, अनुभूति है। इसलिए कहा जाता है कि शांति के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, भीतर जाने की जरूरत है। और भीतर जाना माना अपने अविनाशी वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थित होना। आज मॉर्निंग के फर्स्ट लेसन में ये पहला सत्य आपने समझा है कि जो देखने में आ रहा है वो शरीर है। शरीर के अंदर मस्तक के बीच इस शरीर को धारण करने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं, जिसकी क्वालिटीज शांति सुख आनंद प्रेम है। तो जैसे शरीर के लिए फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए हमें हवा पानी खुराक चाहिए, जीवन की ये तीन प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, हवा पानी और खुराक, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं। आप सोचिए हमें हवा क्यों चाहिए? अगर हमें स्वच्छ हवा सांस लेने के लिए नहीं मिलती है तो हमें सफोकेशन होने लगता है। हम कहेंगे भाई खिड़की दरवाजे खोलो, घबराहट हो रही है, स्वच्छ हवा आवे। हमें पीने के लिए निर्मल जल नहीं मिलता है तो परेशानी हो जाती है। उस समय 36 प्रकार के भोजन भी कोई देता है तो हम कहेंगे नहीं पहले पानी दो फिर भोजन करेंगे, इतने व्याकुल हम हो जाते हैं। योग्य खुराक नहीं मिलती है तो कमजोर होने लगते हैं। तो ये हमारी मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। हमें हवा क्यों चाहिए, पानी क्यों चाहिए, खुराक क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? हाँ, हाँ, पर वही क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर इससे ही बना हुआ है। शरीर में क्या है? हवा, पानी और खुराक। कहते हैं ना 60% पानी है बॉडी में, हवा है, और ये खुराक से ही बना है। तो शरीर हवा पानी खुराक से बना है, इसलिए फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हमें हवा पानी खुराक चाहिए। पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पांच तत्व से ही मेंटेन होता है, रिफ्रेश होता है। स्वच्छ हवा में जाने से कितना अच्छा लगता है। दिन भर काम करके थके हुए आए हैं, स्नान कर लेने से रिफ्रेश हो जाते, आधी थकान दूर हो जाती। समय पर खुराक ले लेने से ताकत आ जाती है। जैसे इसी प्रकार हमें जीवन में और कुछ चाहिए? सिर्फ हवा पानी खुराक रोटी कपड़े मकान चाहिए या और भी कुछ चाहिए, और हमारी कौन सी आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। थोड़ा भी आपस में अनबन है, मनमुटाव है, टकराव है, स्वभाव संस्कार के लड़ाई झगड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है। हमें शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। ये हमारी आंतरिक सूक्ष्म आवश्यकताएं हैं। हमें शांति क्यों चाहिए, सुख आनंद प्रेम क्यों चाहिए? अगर जीवन में शांति नहीं है, तनाव महसूस होता है। कहते हैं ना, वॉम्ब से लेकर टॉम्ब तक, बच्चा गर्भ में है तब से लेकर कब्र में पहुंचता है तब तक तनाव है। बच्चा पेट में है, पैदा भी नहीं हुआ है, और माँ बाप को टेंशन है क्या नाम रखेंगे, कौन सी स्कूल में एडमिशन लेंगे। कब्र में पहुंचते हैं तब तक, विदेशों में पहले से ही पैसे जमा कराने होते हैं कि मेरे लिए ये विधि की जाए, पीछे कब्रस्तान बुक करना पड़ता है। तनाव है, क्योंकि शांति नहीं है जीवन में, सुख नहीं है। कुदरत के इस सुंदर संसार में एक इंसान ही है जो इतना गमगीन हो जाता है, जो खुदकशी कर लेता है, वरना और पशु पंछी कोई आपघात नहीं करते हैं, जीवघात नहीं करते हैं, एक इंसान ही जीवघात करता है। जो सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिशाली प्राणी है, क्यों? समस्त प्राणी जगत में एक इंसान को ही सोचने की, समझने की, कर्म करने की योग्यता मिली हुई है, और प्राणियों में ये क्षमता नहीं है। इतनी योग्यताओं के बावजूद जीवन में शांति और सुख क्यों नहीं है? प्यार नहीं मिलता है सच्चा, निस्वार्थ, तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। प्यार वासना और आसक्ति में बदल गया है। शुद्ध निस्वार्थ आत्मिक प्यार नहीं मिलता है तो अनेक संबंधों के बीच भी इंसान महसूस करता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। अनेक संबंधों की भीड़ के बीच वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि निस्वार्थ शुद्ध प्यार नहीं रहा है संबंध। इसलिए डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के शिकार बनते। तो हमें जीवन में शांति, सुख, आनंद खुशी के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, कितना साधन बनाते हैं, स्थान बनाते हैं एंजॉय करने के लिए, खुशी के लिए कितने खर्च हम करते हैं। वो खुशी अगर जीवन में नहीं है तो जीवन नीरस शुष्क महसूस होता है। तो ये हमारी आंतरिक आध्यात्मिक सूक्ष्म आवश्यकता है, इसको हम बाजार से नहीं खरीद सकते। बाजार में जा रहे हैं मेरे लिए किलो शांति ले आना, दो किलो प्रेम ले आना, नहीं, हम बाजार से नहीं खरीद सकते हैं, ये पैसे से नहीं खरीद सकते। ये हमें भीतर से विकसित करना है, हमें अपने अंदर से जगाना है। आवश्यकताएं हमारी सूक्ष्म है और उसकी पूर्ति हम भौतिक धन साधन और सुविधाओं से करना चाहते हैं तो कहां से होगी। शांति सुख आनंद प्रेम कोई स्थूल चीजें नहीं है, ये सूक्ष्म है, अनुभूतियां हैं, और इसकी पूर्ति हम स्थूल साधन सुविधाओं से करना चाहेंगे तो वो कैसे होंगे। इसलिए आप देखिए, हम समझते थे कि हमारे पास धन साधन कम है इसलिए हम दुखी हैं, पिछड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा धनवान बनने का प्रयास करते हैं। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मिस्टर लेपार्डे ने लिखा है कि हम अपनी सरकार को कहेंगे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा धनवान बनाने का प्रयास न करें लेकिन लोगों की सुखाकारी बढ़ाने का प्रयास करें। अमेरिका की प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें हैप्पीनेस में पीएचडी डिग्री लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं और स्ट्रीम में कम लोग हैं, हैप्पीनेस के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं क्योंकि धन है साधन है जिससे सुविधाएं हम बना सकते हैं पर सुख की अनुभूति वो हमारी अपनी मनोस्थिति आत्मस्थिति पर आधारित है। एक अमेरिकन धनाढ्य की बात में कहूं, बहुत बड़ा धनवान उद्योगपति था वो, बहुत सालों पहले की ये घटना है। अमेरिका से यूरोप रोज बाइक फ्लाइट ट्रैवल करता था बिजनेस के लिए, अपार धन वैभव साधन संपत्ति सुविधाएं परिवार सब कुछ, पर फिर भी जीवन में खुशी नहीं आनंद नहीं। वो पूरा किस्सा अखबार में आया था कि वो जीवन से तंग हो गया, उसने सोचा आज मर जाता हूं, जीवन खत्म कर देता, सोचा जहर पीकर जीवन का अंत लाता हूं। फिर उससे विचार आता है कि जहर पीकर भी नहीं मरा तो कलयुग में जहर भी शुद्ध नहीं मिलता है। तो मरने के लिए क्या क्या तैयारी करता है, सोचा आज नदी के ब्रिज पर जाकर जहर पीकर रस्सा लटकाता हूं, फांसा तैयार करता हूं, उस रस्से के सहारे नीचे उतरकर गले में फांसा डालकर अपने को पिस्तौल से गोली मारकर खुद पड़ूंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो जहर पीकर रस्ते से नदी में उतर कर गले में फांसा डालकर जैसे अपने आप को पिस्तौल मारने जाता है, पिस्तौल रस्से को लग जाती है, वो रस्सा टूट जाता है, वो नदी में गिर पड़ता है और बहुत पानी पी लेने से वॉमिट हो जाता है, जहर भी बाहर निकल जाता है, कोई उससे बचा लेता है। तो उसने अपना ये बयान दिया कि आज मैंने मरने के लिए ये तैयारियां की थी। माना साधनों का सुख भी तब अनुभव होता है जब मेरी अपनी मनोस्थिति आत्मस्थिति सुख स्वरूप होती है। अगर मुझे खुशी नहीं है, कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो, मुझे मजा नहीं आता है। इसलिए हम धनवान बने पर सुख का अनुभव नहीं। अगर धन साधन से ही सुख आता, बेशक जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वो जरूरी है। आध्यात्मिकता हमें ये समझाती है कि धन साधन है, साध्य नहीं है जीवन का। धन एक साधन है, सिद्धि नहीं है। इसलिए भक्ति में श्री लक्ष्मी को, धन की देवी जिसको कहा जाता है, हम कमल पुष्प पर बताते हैं कि धन की देवी होते हुए कमल फूल समान अलिप्त न्यारी थी। माना वैभव होते हुए विलास नहीं था। तो विद्यालय में हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि धन माया है। कई लोग कहते ना, भाई धन संपत्ति माया है, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। कई ऐसे कहते हैं ना, धन को हाथ नहीं लगाते हैं, धनवान को हाथ में रखते हैं। तो धन माया नहीं है, लोभ वृत्ति माया है, विकृति विकार है। धन साधन है जीवन निर्वाह के लिए, पर वो साध्य भी नहीं है। अगर धन सुख का आधार होता तो सभी धनाढ्य सुखी होने चाहिए थे, परंतु हैं नहीं। विश्व का धनाढ्य देश, अब तो हर एक की इकोनॉमी हिलने लगी है, पर अमेरिका विश्व का धनाढ्य देश माना जाता रहा, लेकिन विश्व के सबसे ज्यादा मनोरोगी अमेरिका में। इंसान ने सुख के लिए जो जो प्रयास किए वो ऊपरी बाह्य प्रयास रहे। हम समझते थे हम पढ़े नहीं हैं इसलिए पिछड़े हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाई, कॉलेजेस बनाई, साक्षरता अभियान चलाए, पढ़ाई बढ़ाई। बेशक वेरी इग्नोरेंट पर्सन वेरी इन्फॉर्म पर्सन बन गया। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन नॉलेज हमारे पास आ गई, लेकिन आप देखते होंगे खुद भी कि घर परिवार से मिले हुए अच्छे संस्कार भी बच्चे स्कूल कॉलेज में जाकर गंवा देते हैं। इसलिए पढ़े लिखे भी मेंटली बैकवर्ड होते हैं, कई अंधश्रद्धा गलत रस्मों के शिकार होते हैं, क्योंकि नॉलेज अलग चीज है, इन्फॉर्मेशन अलग चीज है। नॉलेज ज्ञान वो प्रकाश है, अवेयरनेस आती है। हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो सही ज्ञान वो जो बुराइयों से कमजोरियों से मुक्ति दिलाए, लेकिन आज प्रैक्टिकली वो नहीं हो रहा। हमने समाज को व्यवस्थित करने के लिए कायदे कानून बनाए कि इससे हम समाज को व्यवस्थित रखेंगे ताकि लोग सुख से जी सके, लेकिन रिजल्ट्स हम देखते हैं कि जितने कानून बनाते हैं उतने ही उससे तोड़ने के रास्ते भी निकाल लेते हैं। कानून से हम किसी को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। गवर्नमेंट अगर ये कानून आज निकाल दे कि आज के सभी हराम कल से राम हो जाए तो हो जाएंगे? हाँ नहीं। हम एक सेंट्रल जेल में सेवा के लिए गए थे, काफी जेल्स में भी अपने रेगुलर क्लासेस चलते हैं, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव ये सारे प्रयास कर रही है कैदियों के विकास और सुधार के लिए। तो एक सेंट्रल जेल में हम गए थे, सभी कैदियों को बुलाया गया, क्लास हुआ, लोगों को ईश्वरीय मैसेज दिया गया, और फिर हम वो जेल देखने के लिए गए। कुछ कैदी ऐसे थे जो उस समय भी सलाखों के पीछे बंद थे, तो हमने उस जेलर से पूछा कि आपने बाकी सब कैदियों को सभा में बुलाए, इनको क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने बोला कि ये बहुत पक्के गुनाहगार है, अगर इनको हम बाहर निकाले तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। हमने उस कैदी भाई से बात की जो बहुत ही हट्टे कट्टे हेल्दी दिखाई दे रहे थे। हमने कहा भैया आपको हाथ है पांव है, हेल्दी आप नजर आ रहे हैं, क्यों नहीं आप मेहनत करके खाते हैं, क्यों चोरी गुनाह करते हैं? तो वो कैदी क्या उत्तर देता है कि बहन जी चोरी भी कहां बिगर मेहनत होती है, उसमें भी तो मेहनत लगती है। माना आप सोचिए जो ऑलरेडी सजा की स्थिति में है, सलाखों के पीछे बंद है, सजा खा रहा है, पर उसको ये महसूस नहीं है कि मैंने जो किया वो गलत है। कहने का भावार्थ कि हम कानून से कुछ समय के लिए व्यक्ति की अनैतिक प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, पर उनकी अनैतिक मनोवृत्ति को निर्मूल नहीं कर सकते। उनकी मनोवृत्ति के परिवर्तन के लिए तो रियलाइजेशन चाहिए, जो सही ज्ञान और समझ से आती है। आज कोई भी चीज को अच्छी रीति से देखने के लिए दोनों प्रकाश की जरूरत है। ये बाहर का प्रकाश भी चाहिए, इन आंखों की रोशनी भी चाहिए। ऐसे जीवन को यथार्थ रूप से समझने के लिए बाह्य ज्ञान के साथ साथ हमें अपने आंतरिक आध्यात्मिक जगत का ज्ञान भी जरूरी है। तभी हम हर व्यक्ति, परिस्थिति, हर बात को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। इसलिए दो चीजें जीवन में बहुत आवश्यक है, एक तो सही समझ, सत्य ज्ञान जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए, क्योंकि हर एक इंसान अपनी बिलीफ्स के अनुसार बिहेवियर करता है। जीवन के अनेक एस्पेक्ट हैं और हर एस्पेक्ट से जुड़ी उनकी अपनी बिलीफ है। वो बिलीफ मेरे अपने मन की भी हो सकती है, औरों की दी हुई भी हो सकती है। कई मान्यताएं परिवार से मिलती हैं, शास्त्रों से, गुरुओं से, एजुकेशन से मिलती है, उनकी अपनी मन की मर्जी की भी होती है। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जन्म, मृत्यु, कर्म, कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, स्वर्ग, नरक, अनेक बातें हैं, उनसे जुड़ी हरेक की अपनी अपनी मान्यता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन क्या है, आप सबके तरफ से एक उत्तर आएगा? आएगा नहीं। हर एक अपने अपने विचार अनुभव से बताएंगे, और जैसी उनकी बिलीफ होती है वैसा ही उनका बिहेवियर रहता है। अगर वो बिलीफ रॉन्ग है तो बिहेवियर भी रॉन्ग चलता है, और जब तक कर्म रॉन्ग है हम सदा काल के सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बिहेवियर को राइटियस करना है, बिलीफ्स को करेक्ट करना होगा, और उसके लिए हमें मूलभूत सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा आकर सारे ही यूनिवर्सल ट्रुथ्स जिसके आधार पर ये दुनिया चलती है, उन मूल आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान देते। इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो कौन से अंधकार, कौन से प्रकाश की बात है? राइट अंडरस्टैंडिंग, व्यक्ति का सही विवेक, और दूसरा है विल पावर, शक्ति। आपकी आत्मा में, या तो समझ ही नहीं है या गलत समझ है जिसके कारण जीवन में कर्म व्यवहार गलत चलते रहते हैं। और कई बार समझ है पर आत्मा में शक्ति रही है। हरेक समझते हैं कि हमें शांति से जीना चाहिए, सबके साथ प्यार से चलना है, सबको सुख देना है, सहयोग देना है। हरेक समझते हैं, हरेक चाहते, पर क्या प्रैक्टिकल उस अनुसार सदा हम कर पाते हैं? कर पाते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। इसलिए हम कहते हैं मुझे सोचना नहीं है, बस अब इस बात को मन में फुल स्टॉप लगा देना है। लेकिन फिर वही बात चिंतन में आती रहती है, जो नहीं सोचना चाहिए वो बार बार सोचते रहते हैं, जिस पर विचार चलने चाहिए, हेल्दी थिंकिंग होना चाहिए, तो विचार नहीं चलते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, फिर सॉरी करते रहते हैं, मेरे मुख से निकल गया, ऐसे कहते। पर ऐसे कैसे निकल गया? जरूर मन में आया, तब तो बोलना हुआ। जो नहीं करना चाहिए, जीवन का स्वरूप क्या बन गया है आज कि जो नहीं करना चाहिए वो हम बार बार करते रहते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। ये क्या बताता है कि आत्मा में शक्ति नहीं है। इसलिए हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहा है। जीवन का लोगस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला गया है। कोई कुछ बोल देते हैं, अपमान कर देते हैं, हम उदास हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई महिमा करते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ प्राप्त हुआ, आनंद हुआ, कुछ लॉस हुआ, दुखी हो जाते हैं। तो जीवन का, हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहा। आप अपने घर में नया टीवी ले आते हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे आते हैं क्या? हाँ, कि भाई आप जो दिखाना चाहो वो हमें दिखाओ, ऐसे करते हैं? नहीं, बल्कि घर का हर सभ्य क्या चाहेगा कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ताकि मैं जो देखना चाहूं वो देख सको। और जीवन का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में है? नहीं है। तो ये पढ़िए, देखिए, इससे हमें अपने जीवन की वास्तविक स्थिति का ख्याल आता है कि आज हम कहां पर है। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। आप देखिए, नॉर्मली रूटीन वर्क ही हमें रोज करना होता है। ओवर वर्क महीने में कितने दिन होते हैं, लेकिन जिस समय ज्यादा काम होगा हम चिढ़ जाते हैं, थक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। અને બહુ જલ્દી છોટી છોટી બાતો મે હમ અપસેટ હો જાતે હૈ થક જાતે જિમ્મેવારી ઉઠાને કી બાત કો ટોલરેટ કરને કી શક્તિ નહીં હૈ તો થક જાતે ઇરિટેટ હો જાતે હૈ જો બાતે આતી હૈ પરિસ્થિતિ આતી હૈ उसको पार करने की क्षमता अनुभव नहीं करते कि मैं ये नहीं कर सकूंगी। इसी प्रकार कुछ भी न करने पर बहुत कुछ मन सोचता रहता है। शांति से बैठने का अभ्यास ही नहीं है। चाहिए जीवन में शांति, और अभ्यास किस बात का है? शांति में रहने का है अभ्यास, शांति से बैठने का है नहीं। हम अपने आप में मस्त होके शांति से आनंद में बैठ नहीं पाते। कुछ भी काम नहीं है, जरूरी नहीं है तो भी मोबाइल के बटन फालतू दबाते रहेंगे। आप देखिए, बैठ नहीं पाते हैं हम। हर क्षण को, हर दृश्य को एंजॉय नहीं कर पाते। मन सोचता ही रहता है। इसलिए सामान्य से ज्यादा आराम की आवश्यकता रहती है। कुछ भी काम आएगा मेरे को थोड़ा आराम से सोचने दो। दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुनने की क्षमता नहीं है। खुद ही दुखी हो जाते हैं या सुन नहीं पाते। हेल्प करने की बात तो दूर रही। कई बार हम दूसरों को बोलने भी नहीं देते, अधिकतर बहनों को, बच्चों को, कमजोर को। कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझते रहते हैं। ये डिप्रेशन क्या है? डिसीजन नहीं ले पाते, क्लैरिटी नहीं होती है। कोई एक निर्णय में फर्मनेस नहीं है। घड़ी घड़ी विवेक बदलता रहता है प्रेशर में। हम देखते हैं ना, यहां आते हैं अच्छे वातावरण संग में तो अच्छा सोचते, यहां से बाहर निकलते हैं गेट के बाहर, दूसरे संग और प्रेशर में आते हैं तो जिस तरफ का रुख उस तरफ हमारा जीवन हो जाता है। क्योंकि हमारे में वो शक्ति, दृढ़ता नहीं है कि हम अपने विवेकपूर्ण निर्णय में दृढ़ रहे, स्थिर रहे। कंफ्यूज होता है, विवेक चलित होता रहता है। तो ये सब जो परिस्थितियां हमारी है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। जीवन में कर्मिक अकाउंट से जो भी रिलेशंस मिले हैं, चाहे परिवार में, चाहे कार्यक्षेत्र में, जो हैं वो अच्छे नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पाते। मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैं इनके साथ नहीं चल सकता। हर एक अपने आप से पूछिए, हम अपने आप से संतुष्ट हैं? अपने बीबी बच्चों से संतुष्ट हैं? जिस परिवार में हम रहते हैं उससे संतुष्ट हैं? जहां नौकरी करते हैं उससे संतुष्ट हैं, जिस देश में रहते हैं उससे संतुष्ट हैं। जब संतुष्ट नहीं है तो प्रसन्न कैसे होंगे? इनर सेटिस्फैक्शन ही चेहरे पर प्रसन्नता लाती है। जब आंतरिक संतुष्टता नहीं है तो चेहरे पर प्रसन्नता भी नहीं है, खुशी नहीं है। इसलिए अन नेचुरल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, लाफ्टर शो चलाने पड़ते हैं, है ना, लाफिंग क्लब्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नेचुरल खुशी प्रसन्नता नहीं। जिन देवी देवताओं को पूजते हैं उनके चेहरे हर्षित दिखाते, प्रसन्न दिखाते। कोई चिंता में, दुख में, उदास में बैठा हुआ देवी देवता देखा कोई? हाँ? क्या अंतर है, सोचिए। एडजस्ट नहीं कर पाते, सिर दर्द होता है, कोई ना कोई मानसिक शारीरिक बीमारियां लगी हुई रहती है। आप किसी को कह के देखिए कि आज मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, वो भी कहेगा हाँ देखो ना मेरे को भी बहुत पैर दुख रहे हैं। हर एक अपना कुछ ना कुछ रोता ही है। हाँ, अगर इसमें से कोई भी एक बात जीवन में है, माना अंडरस्टूड है कि हमें जीवन की, इस जगत की सही समझ की आवश्यकता है और आत्मशक्ति की आवश्यकता है। जब ये आंतरिक शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति कम हो जाते हैं तो बाह्य परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं। कुछ घटनाएं आपके सामने जो अक्सर हम जीवन में अनुभव करते हैं, हर एक के सामने आती है ये। आप परिवार सहित बाहर घूमने के लिए जाने के लिए तैयार है और अचानक बारिश हो जाती है, उस समय क्या मन की स्थिति रहती है? कौन से शब्द निकलते हैं? हाँ, इसी वक्त आना था, जैसे हमेशा हमें पूछ के ही आती हूँ, है? तो भी हम सोचते हैं बारिश को दोष देंगे, हमारा भाग्य ही ऐसा है, किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे और आपके फ्रेंड ने कहा कि अभी वो ना लो, आपने नहीं लिया और उसका दाम अनेक गुना बढ़ गया। हाँ? अब आप पश्चाताप करेंगे कि ले लेता था तो अच्छा था। हाँ? पर इससे क्या होता है, समझो, पश्चाताप करने से क्या होगा, फ्रेंड को ब्लेम करने से क्या होगा? हा? आपके पिताजी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया पर वो कंपनी बोगस निकली। हा? आपने अपने पिता को कहना भी चाहा पर वो सुनना नहीं चाहा, बड़ी अमाउंट उसमें चली गई है, चिंता होगी ना। तो ये इस प्रकार के सिचुएशन हर आए दिन जीवन में आती है, लेकिन पिता परमात्मा ने वर्तमान समय के अनुसार जो सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम, अभी जो समय चल रहा है उसको समझने के लिए ये बातें बताई हैं। मकान पुराना हो गया, दीवारों में दरारें हो जाएगी, कहीं से प्लास्टर उखड़ जाएगा, कहीं खिड़की दरवाजे ढीले हो जाएंगे, छत से पानी चूने लगेगा। अंडरस्टूड है, ये निशानियां है कि मकान पुराना हो गया है। बीमारियां होने लगती है, थकान होने लगती है, एज होने पर वे बाल सफेद होने लगे, क्रीज होने लगी चमड़ी में, तो हम कहेंगे भी ये एजिंग प्रोसेस है, इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है, ये होता ही है। तो ये जो सारी सिचुएशंस है वो बताती हैं कि अब दुनिया बूढ़ी हो गई है, संसार पुराना हो गया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इट इज नॉट द टाइम टू ब्लेम, ये चेंज का पीरियड है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। परिवर्तन तो सदा से होता रहा, प्रतिक्षण दुनिया बदलती है, और दुनिया माना मानव शरीर, आत्मा, स्थिति, प्रकृति, सब में परिवर्तन होता रहा है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, आमूल परिवर्तन का समय है। इसलिए दूसरों को दोषित करने का ये समय नहीं है। अक्सर कुछ भी होता है हम व्यक्ति को, परिस्थिति को दोषित करते हैं, वो है ही ऐसे, उन्होंने किया ही ऐसा, बोला ही ऐसा जो मुझे गुस्सा आ गया, लोग ही ऐसे हैं, जमाना ही ऐसा है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, अक्सर ऐसे ही कहते हैं ना। पर ये समय दूसरों को ब्लेम करने का नहीं है, इट इज नॉट टाइम टू चेंज अदर्स, दूसरों को बदलने का समय नहीं है। ये तो आप खुद प्रैक्टिकल परिवार में अनुभव करते होंगे कि अब खुद को ही बदलने का समय है, आप बच्चों को भी कुछ नहीं कह पाते, कुछ भी आप पूछते हैं वो ब्लंटली सामने जवाब दे देते हैं, है ना, उसमें टॉलरेंस नहीं है, खुद को ही एडजस्ट करना है, खुद को ही चेंज करना है। दूसरे हमारी कृतज्ञता व्यक्त करे वो इच्छा रखने का भी ये समय नहीं, मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने ऐसा किया, शौक आ जाता है, आघात लगता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। पर ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है कि हमारे अच्छे किए का वो अच्छा रिटर्न करे, ये भी अपेक्षा नहीं रखने का टाइम, इट इज नॉट द टाइम टू रिग्रेट और रिपेंट, सिर्फ पश्चाताप की स्थिति में बैठे रहने का ये टाइम नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, हाथ से चला गया, गया ना, अब क्या करना है वो सोचना, अब क्या करना है उस पर फोकस होने की जरूरत है। इट इज नॉट द टाइम टू वरी अबाउट फ्यूचर, क्योंकि आपके चिंता करने से कुछ होना नहीं है, भविष्य अच्छा बनाने के लिए चिंतन करिए, चिंतन करिए, प्लानिंग करिए, पर चिंता करने से कुछ प्राप्ति नहीं है। इट इज नॉट द टाइम टू वेस्ट टाइम, ये टाइम वेस्ट करने का समय नहीं, बहुत कम समय में बहुत ऊंची प्राप्ति करने का ये समय है, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करनी, वेस्टिंग ऑफ टाइम वेस्टिंग ऑफ लाइफ है। दो चीज कही है, इट इज टाइम टू एम्पावर वन सेल्फ, ये समय खुद को शक्तिशाली बनाने का, वो ठीक से बोले ना, वो ठीक से व्यवहार करे, वो क्यों ऐसा करते हैं तब मैं डिस्टर्ब होती हूं ना, नहीं, अपने आप को ही शक्तिशाली बनाने का ये समय है। और इट इज टाइम टू लेट गॉड टेक ओवर। जो आप अच्छा कर सकते हैं, कोई बात ठीक करने के लिए, सुलझाने के लिए, जो कर सकते हैं करिए, वरना भगवान को दीजिए, उन पर छोड़िए, आप अपना प्रयास करिए। अगर सही प्रयास के बावजूद भी नहीं होता है तो ऑलमाइटी बैठा है आखिर, कहते हैं ना, टाइम एंड गॉड आर ग्रेट हीलर्स। समय पर बात ठीक हो जाएगी, भगवान की शक्ति से बात ठीक कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जीवन की सही समझ देती है और मेडिटेशन हमारी आंतरिक शक्ति को विकसित करता है। इसलिए आवश्यक है खुद के परिवर्तन की, और परिवर्तन करना माना अपने गुण और शक्तियों का विकास कराना। वर्तमान परिदृश्य जो हम देख रहे हैं वो ये है, ब्रेकिंग वैल्यू सिस्टम। आज चारों ओर वही आपको दिखाई दे रहा है कि लोग अपनी नीतिमत्ता छोड़ रहे हैं, कोई वैल्यूज नहीं रहे हैं, भाई इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई नीति ही नहीं है, कोई मॉरल ही इसका नहीं। हर फील्ड में, राजनीति हो, धर्म हो, प्रशासन हो, सेवा का हो, कोई भी फील्ड हो, और उस पर हम अपना मन का गुबार निकालते रहते हैं, लोग ऐसे, जमाना ऐसा, सरकार ऐसी, फलाने ऐसे, ये ऐसे, सब ऐसे। हर फील्ड में वैल्यू सिस्टम ब्रेक हो रही, कोई बात नहीं, खुद इनिशिएटिव लीजिए, आप अपने आप से प्रण करिए, आप शुरुआत करिए, आप अपने से जिम्मेवारी लीजिए कि मैं नीति से काम करूंगा, अपने वैल्यूज अपने सिद्धांत बनाकर चली। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, अप दीवो भव, जब चारों ओर अंधकार नजर आए तुम खुद खुद का दीपक बनो। इसलिए खुद से शुरुआत करें, हम खुद इनिशिएटिव लें, मैं अपना कार्य, अपना जीवन, अपना बिजनेस वैल्यू से करूंगा। आप अनुभव करके देखिए, थोड़ा ही आप चलेंगे वैल्यूज के साथ और आपको साथी मिलने लगेंगे। भगवान का ये वायदा है, हिम्मत का एक कदम उठाओ, हजार कदम मैं आपके साथ हूं। पर सिर्फ हम हिम्मत का कदम उठाएं बस, अपने आप साथी आने लगते। शुरुआत एक ब्रह्मा ने की, 400 ने शुरू में साथ दिया, आज लाखों भाई बहने। कलयुगी वातावरण में भी पवित्र योगी जीवन बनाने वाले हैं, हम इनिशिएटिव ले, कोई बात नहीं, सब ऐसा कर रहे हैं, हम ठीक करेंगे, अपने जीवन का अपना हाथ में है ना, हम इनिशिएटिव लेंगे. आइडियाज एंड एटीट्यूड्स के कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में मतभेद होते हैं, अलग अलग मनोवृत्तियां हैं, विचार हैं, मते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही है, घर में भी, कार्यक्षेत्र में भी, समाज में भी. वहां हमें हट, जिद सिद्ध करने की जरूरत नहीं. हम अपना आइडिया दें, साइलेंस हो जाए, साक्षी हो जाए. जरूरी नहीं है अच्छी बात भी सब माने. मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, हम अपना विचार दें, कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में न जाए, साइलेंस में. नहीं तो इसी बहस, आर्ग्यूमेंट में या अपने विचार दूसरों पर थोपने में कितने झगड़े होते हैं, कॉम्पिटिशंस. हर बात में कॉम्पिटिशन है, लोग कहते हैं. कॉम्पिटिशन उनके लिए है जो ग्रीड में है. अगर ग्रीड से नीड में आप चले जाएं, तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं. सादाई और कम आवश्यकता आंतरिक शांति और सुख के आधार है. अभी हमारा बिजनेस विंग की कॉन्फ्रेंस थी, एक बड़े बिजनेसमैन ने अपना अनुभव सुनाया कि कंपटीशन है ही नहीं. आज हर कोई कहता है ना कंपटीशन है बिजनेस में, सब में. उसने बोला कंपटीशन है ही नहीं. उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं अपनी कार में अपनी फैमिली के साथ आराम से हम घूमने के लिए जा रहे थे, अपनी ट्रैवलिंग को आराम से एंजॉय कर रहे थे कार में, हंसी खुशी गाते मस्ती से अपनी गति से जा रहे थे. इतने में कार स्पीड से निकली और आगे बढ़ गई हमारे से, और हमें आया कि ये कैसे आगे बढ़ गए, हम भी और स्पीड से चले, वो भी स्पीड से, हम भी स्पीड से, और दोनों गाड़ियां साथ उस शहर पर जाके पहुंची. पर जब हम पहुंचे तो देखने वाला कौन था. तो उससे हुआ कि कंपटीशन करने से फायदा क्या हुआ, उसके साथ साथ में पहुंच गया पर देखने वाला कौन था. और जो आपस में प्यार से शांति से हंसते गाते जा रहे थे, उसके बजाय कंपटीशन करने में और ही टेंशन में आ गए. इसलिए जीवन अपनी विशेषताओं से चलाओ, आप अपनी योग्यता से आगे बढ़िए, दूसरे को देख के कंपटीशन करके टेंस होने की जरूरत नहीं, किसी को धक्का मार के गिरा के आगे जाने की जरूरत नहीं है. हम अपनी योग्यता से आगे बढ़े, और हर एक इंसान यूनिक है, वो अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकता है. तो आज जरूरत है कि हम नीड से ग्रीड में चले गए. आवश्यकता अलग चीज है, इच्छाएं लोभ अलग चीज है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, तो शांति कहां से होगी. इसलिए सुख का आधार सादगी सात्विकता कम आवश्यकता. इसलिए आज से 50-100 वर्ष पहले के मानव जीवन को देखिए, कम साधनों में कम सुविधाओं में भी लोग सुखी थे, संतुष्ट थे, आपस में प्रेम और विश्वास था. और आज सब कुछ होते हुए भी ये चीजें, ये अनुभूतियां नहीं है. तनाव से भरा हुआ वायुमंडल है, चारों ओर खींचातानी है, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद है, अनबन है. जहां जाओ हर जगह यही वातावरण और बातें मिलती हैं. कोई बात नहीं, आप शुभ भावना रखिए सबके लिए। रोज सुबह उठते हैं भगवान को याद करिए, खुद के लिए शुभ भावना, परिवार के लिए शुभ भावना, अपने साथी कर्मचारियों के लिए शुभ भावना, देश और विश्व के लिए शुभ भावना। इसमें कोई खर्च नहीं होता है और ही मन शांत और शुभ रहता है। किसी को और कोई मदद नहीं कर सकते हो, इतने धन साधन नहीं है, शुभ भावना तो रख सकते हो ना। इसलिए विद्यालय ने प्रोजेक्ट बनाया है आई प्लेज फॉर पीस, मुझे 10 मिनट शांति में बैठना है, शांति का चिंतन करना है। विश्व शांति दूर की बात है, खुद को शांत बनाना है। तो शुभ भावना, हर एक के लिए शुभ भावना, तो तनाव से मुक्त रह सकेंगे। सफल होते हैं पर भय है सदा सफलता रहेगी या नहीं। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, भय से अस्थिर हो जाते हैं। भगवान के साथ योग लगाइए, उनका साथ लीजिए, हिम्मत रखिए, अपनी अच्छी मेहनत करते जाइए, उसकी संतुष्टता भी बहुत बड़ी चीज होती है। और परिस्थितियां जीवन में आती ही रहती हैं, जीवन है माना परिस्थितियां हैं। कोई बात ना हो और मैं खुश और शांत रहूं, वो कोई ताकत की बात नहीं है ना। कोई जंगल में जाके कहे कि मैं बिल्कुल शांति में हूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, तो वो कोई शक्ति नहीं है, है? भाई चूहे है ही नहीं और बिल्ली स्थिर रहे, तो उसको आप स्थिरता संयम कहेंगे? नहीं। बातें हो, परिस्थितियां हो, कलियुकांत समय है, ये चीजें होंगी ही, पर इनके होते हुए भी मुझे शांति में रहना है तो हल मिलेगा। अशांत हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते, अपसेट हो जाते हैं, सॉल्यूशन सामने है पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि मन ठीक नहीं है। मन शांत है, स्थिर है, शुभ है, आइडिया टच होगा, इस बात को कैसे पार करना। तो आगे के सत्र में और अधिक इस पर आप गहराई से जाएंगे। इस सत्र के द्वारा यही मैंने बताने का प्रयास किया कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति योग्यताओं को विकसित करने की जरूरत है, तो बाह्य कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें अशांत या दुखी नहीं कर सकता है। भगवान का बनाया हुआ ये संसार दुख के लिए नहीं है। एक इंसान भी फिल्म या ड्रामा बनाता है, अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करता है। हरेक व्यक्ति अपनी रचना अच्छे से अच्छी बनाने का प्रयास करते। हरेक माँ बाप चाहेंगे मेरे बच्चे मेरे से भी बढ़कर हो। एक आर्टिस्ट, एक शिल्पकार, एक डांसर अपनी हर रचना बेस्ट बनाना चाहते हैं। तो भगवान की ये दुनिया वर्स्ट कैसे हो सकती है? ये क्यों वर्स्ट हो गई? भगवान ने तो अपने जैसा ही हरेक को बनाया था, पर क्या मिस हो गया है जो दुख शांति की फीलिंग से जीवन भर गया? वो गहरी बातें आगे और आप समझते जाएंगे। ओम शांति।